الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا سيدنا سب نے درود شریف پڑھ لیا سب نے دعا بھی کر لی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اور ربنا سيدنا علما اس کے بعد پھر آپ کیا بتاتے ہیں کہ ہم پچھلی کلاس میں کیا پڑھ رہے تھے آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کیوں رہے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور آپ کیا کہہ رہے تھے آپ بھی یہ کہہ رہے تھے اس کا جواب ماشاء اللہ سوال سب سے زیادہ ہے جواب نہیں آیا ٹھیک ہے اچھا ایک نئی فیچر ہے یہ زوم کے اندر اچھا تو چلیں ہم اس سوال کے اوپر انشاءاللہ آئیں گے اس سے پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے کا خلاصہ کر لیتے ہیں یعنی سمرائز کر لیتے ہیں ہم نے اس واقعے کے اندر کیا پڑھا ہے تو یہ واقعہ ہے کیا اس کا نام کیا ہے اس واقعے کا آپ کو بتائیں جی واقعہ اف اس کا نام اف کا مطلب کسی کو پتا ہے جھوٹا الزام لگا رائٹ یہ کہہ رہے تھے پروپیگنڈا ایک پروپیگنڈا تو نہیں ہے اس کا مطلب بہتان لگانا جھوٹا الزام لگانا ٹھیک ہے سلینڈر کہتے ہیں اس کو انگریزی کے اندر تو اس واقعے اف میں ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام ایک غزوے کے اوپر گئے ہوئے تھے مسلمانوں کو لے کر کے اور اس غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں بہت سارے منافقین ہپوکریٹس بھی گئے تھے ٹھیک ہے یوزلی ہپوکریٹس جو ہیں وہ تو چکر میں رہتے تھے نا کہ ہمیں نہیں جانا پڑے کل اگر کسی نے بیان سنا ہو تو کل غزوہ تبوک کی بات ہو رہی تھی جس میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا تو اس میں کیا ہوا تھا کہ منافقین جو ہے نا انہوں نے وہ نہیں گئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا پیچھے رکھ دیا تھا تو یہ منافقین جو ہیں یہ غزووں کے اوپر نا بڑی مشکل سے نکلتے تھے اور اگر نکلتے بھی تھے نا تو بہانے کی تلاش میں رہتے تھے کہ بس کسی طریقے سے واپس آ جائے جیسے غزوہ احد کے اندر ان میں سے جو 300 تھے یہ گئے تو تھے لیکن فوراً واپس آ گئے نا تو اس والے غزوے کی خاص بات یہ تھی کہ سارے کے سارے گئے تھے واپس کوئی نہیں آیا تھا ان میں سے لیکن ان کے اندر کیا تھا شر تھا ان کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی نفرت تو تھی تو اس دفعہ انہوں نے اس نفرت کا اظہار جو ہے نا وہ دوسرے طریقے سے کیا پہلے نفرت کا اظہار کرتے تھے کہ ہم جائیں گے نہیں غزوے کے اوپر یا ہم وہاں سے بھاگ کے واپس آ جائیں گے رائٹ اور اس دفعہ کیسے اظہار کیا کہ انہوں نے اس دفعہ بہتان لگا کر کے مسلمان کے خلاف اور مسلمانوں کے اور نبی علیہ السلام کے خلاف گندی گندی باتیں کر کے اپنی نفرت کا اظہار کیا پہلے انہوں نے گندی بات کیا کری تھی کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ واپس پہنچیں گے تو جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا یہ گندی بات کری تھی نا اس نے عبداللہ بن ابی منافق نے پھر اس کے بعد دوسری گندی بات اس نے کیا کری کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا یہ واقعہ پیش آیا تو اس نے جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گندی گندی باتیں کرنی شروع کر دی اور اس کا جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہی نہیں ہوئی پتہ ہی نہیں چلا ان کو جب واپس پہنچ گئے تو وہ واپس پہنچ کے بیمار ہو گئے جیسے ہوتا ہے اکثر ہم لوگ سفر سے واپس آتے ہیں عمرے کا سفر ہو یا کہیں اور کا سفر ہو تو واپس آ کر کے وائرل انفیکشن وغیرہ ہو گئے ہوتے ہیں راستے سے لگے ہوتے ہیں نا وائرل انفیکشن تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی لگتا ہے ایسے ہی کوئی انفیکشن وغیرہ ہو گیا بیمار پڑ گئی بخار ہو گیا اور گھر کے اندر ہی تھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ باہر جو ہے وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں حتیٰ کہ ایک موقع پر جب ان کو قضاء حاجت کے لیے جانا تھا تو ام مفتاح رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے ساتھ تھی ان کو ٹھوکر لگی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہا برا وہ مفتاح کا انہوں نے کہا تم مستا کو برا کیوں کہہ رہی ہو مستا تو بدری صاحب ہی ہیں اتنے افضل ان کا مقام ہے तुम क्यों बुरा कह रही हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर उस वक्त उनको पता लगा, और उसके बाद जो है ना वो इनका रो रो करके बुरा हाल हो गया। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो कहते हैं उर्दू में, रो रो के हलकान हो गई, ठीक है, हत्ता के जो है ना वो अपने अम्मी अब्बू के घर चली गई, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और वहां पे जाकर के भी जो है ना वो बहुत इनका बुरा हाल था, रो रही थी, हत्ता के अम्मी भी रो रही थी, हत्ता के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे जबरदस्त इंसान जो थे, मजबूत तरीन, वो भी रोना शुरू हो गए थे एक मौके पर, ठीक है। फिर उसके बाद वो वाला वाक्य हुआ कि नबी अलैहि सलाम उनके पास तशरीफ लाए और उन्होंने ये बात कही कि भाई आयशा अगर तुमसे गलती हो गई है तो अल्लाह ताला से माफी मांग लो, अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, और अगर तुमसे गलती नहीं हुई है तो फिर अल्लाह ताला कुछ तुम्हारा क्लियर कर देंगे मामले को। तो उसके बाद जो है ना आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उन्होंने फरमाया कि इसके बाद तो मेरा रोना ही बंद हो गया ना, आंखों से आंसू ही आना खत्म हो गए, और मैं तो बिल्कुल जो है ना वो यानी एक दूसरे फेज के अंदर चली गई, दूसरे यानी बोर्ड में चली गई, और जाकर के उन्होंने कहा उसके ऊपर, उन्होंने कहा कि आप लोगों को अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो आप मेरी बातें यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा, इतने लोगों की बातें जो है ना ये आप लोगों के ऊपर असर हो गया है इसका, तो आपने उनकी बात को तस्लीम कर दिया। आयशा सिद्दीका जाहिर है बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो मुश्किल में थी, बहुत ज्यादा गम था इनको, तो इस गम की हालत में उन्होंने फिर इस तरह की बात नबी अलैहिस्सलाम और अपने वालिदैन के बारे में कही, ठीक है। तो जब इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा गम होता है तो फिर वो इतना ज्यादा जो है ना वो से अदब वगैरह का मामला जो है वो उतना नहीं रहता, तो ये एक नेचुरल सी बात थी, इसको तबीयत और नेचुरल बात कहते हैं, ठीक है। तो फिर आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो जाकर के लेट गई, और नबी अलैहिस्सलाम जो है फिर वो वहां से वहां पर ही मौजूद थे, बैठे हुए थे कि क्या हुआ। आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो लेटी भी है और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बैठे हुए थे कि क्या हुआ। फिर उसके बाद जी हमदा हाँ, अब जो है ना बिल आखिर वही नाजिल होना शुरू हुई। कितना अरसा गुजर चुका था इस मामले को शुरू हुए हुए, एक महीना गुजर चुका था, राइट, एक महीना गुजर गया था और वही नहीं आ रही थी। अल्लाह ताला मुसलमानों को आजमा रहे थे और काफिरों को, यानी जो मुनाफिकीन की शक्ल में, असल में तो काफिर ही होते हैं, ऊपर से मुसलमान बने होते हैं, तो मुनाफिकीन को जो है ना वो अल्लाह ताला और जो है वो पुश कर रहे थे उनकी मुनाफिकत की वजह से, उनकी नफरत की वजह से, और तुम गुनाह करो ताकि तुम्हें टिका करके अजाब दें, टिका करके कहते हैं जबरदस्त तरीके से फिर हम तुम्हें पकड़ें, दुनिया में भी पकड़ेंगे तुम्हें और आखिरत में भी पकड़ेंगे। तो एक महीने तक अल्लाह ताला ने वही रोक के रखा और इसके बाद फिर वही लाजिम होना शुरू हुई, और आखिरी क्लास के अंदर हम उस वही की ही जो आयात है, कौन सी सूरत के अंदर है, सूरह नूर के अंदर है, 24वीं सूरत है कुरान मजीद में, तो उनकी आयात असल में पिछली क्लास में हम आपको पढ़ करके उनका तर्जुमा और तफसीर जरा हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात उसके अंदर बताने फरमाई थी कि भाई ये जो एक ग्रोह है ना तुम लोगों के दरमियान के, जो के ये बोहतान लेकर के आया है, जिन्होंने आयशा सिद्दीका के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें करी हैं, तो तुम इसको जो है ना इस पूरे मामले को अपने लिए शर्मत समझो, बल्कि तुम्हारे लिए खैर है। क्या खैरें थी इसके अंदर, उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह को जदाए खैर थे, उलमा ने इस खैर को बयान किया कि क्या खैरें थी इसके अंदर, क्या भलाई क्या थी, है ना, इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतना रोना खोना, राइट, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे खैर। तो इसके अंदर एक खैर उलमा ने लिखी है जो अभी बात भी हुई जिसके ऊपर, ये जो हिपोक्रेट्स थे ना वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए, खुल करके सामने आ गए, अपनी गंदगी के साथ, अपनी बुराइयों के साथ खुल के सामने आ गए, बेनकाब हो गए हिपोक्रेट्स। और दूसरी बहुत बड़ी चीज क्या हुई, वो ये हुई कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उम्महातुल मोमिनीन में से थी और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी, कितनी सारी चीजें उनके साथ शामिल है, नबी की बेटी, नबी की बीवी और सिद्दीक की बेटी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ना उनका मुकाम जो है वो बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर, इतना अजीम मर्तबा उनको अता फरमा दिया, ठीक है। आपको याद है हमने काफी अर्सा पहले किसी क्लास के अंदर जब हिजरत मदीना का वाक्य बयान किया, तो उस वक्त हमने आपको एक बात बताई थी, कोई बताए तो उसको टॉफी देंगे। टॉफी है नहीं अभी, लेकिन इंशाल्लाह घर से ला के देंगे। तो एक बात बताई थी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, हिजरत मदीना के वाकये में, ठीक है, कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हिजरत मदीना का खास एक
के आप सुनिए, तो आप सुनिए
माशाल्लाह दुल्ला इब्राहिम दुनिया दुल्ला है। सॉरी चल आप कर दीजिए, मेरी बस। वो कहते हैं कि इब्राहिम भाई छा गए है, माशाल्लाह इब्राहिम भाई छा गए। आपका भी ये जवाब था माशाल्लाह, आप भी मुसावा भाई, आप भी कहने वाले। उसके ऊपर एक शेर सुनाया था, ये तो टॉफियां तो मिल गई। अब जो है वो एक चॉकलेट भी मिल जाएगी मार्स, या जब अगर कोई वो शेर भी बताएगा जो कि हमारे असर जो है खत्म किया करते हैं इस मौके पर। बल्कि इस मौके पर हजरत ने तो नकल नहीं किया था, हजरत जी ने जो है इसको मेराज के मौके पर नकल किया। अरे माशाल्लाह, लिख रहे। अब हम आपका डिब्बा खत्म करने के मूड में नहीं है, दो तीन जो है वो दे देते हैं। एक तो हो गया अभी इब्राहिम भाई की, एक तो आपकी हो गई, ऐसे फेंक दो, एक आपकी हो गई उस भाई कैच करें। सबको नहीं मिल रही है, अच्छा यूसुफ को चाहिए उनको बाद में मिलेगी, लेकिन ये इस सवाल के साथ ना साथ इधर आप ही देने वाले। सही थी आप ही, अरे नेक्स्ट टाइम लीजिए। अच्छा तो वो शेर जो है ना जो हजरत जी पढ़ते हैं मेराज के मौके पर, तो इस आजिज के दिल में अजीब अल्लाह ने बांट डाली और हमने वो आपको हिजरत के मौके पर सुनाया। और वो शेर था कि जैसे कि शायर कह रहा है कि आका, ए आका अलैहि सलातो सलाम, शायर नहीं कह रहा बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु गोया के कह रहे हैं कि आका अलैहि सलातो सलाम तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू लौह कलम, लौह जो है यानी जिस तख्ती के अंदर अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी तकदीर लिखी हुई है उसको लौह कहते हैं ना, और कलम जो है जिससे कि उसकी तकदीर अल्लाह ताला ने लिखवाई है, डी पेन, राइट। तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक, नबी अलैहिस्सलाम आपके कदम तक जो मैं पहुंच गया ना, ये मेरी मेराज है। और ये मेराज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कब नसीब हुई, वाकए हिजरत के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सर रख करके सो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो अपने पैर से सांप का खून बंद कर देते हैं, राइट। और मुस्तकिल नबी अलैहिस्सलाम के कभी राइट पे जा रहे हैं, कभी लेफ्ट पे जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कहीं दुश्मन इधर से हमला ना कर दे, कहीं दुश्मन इधर से हमला ना कर दे, कभी इधर से हमला ना कर दे, है ना। नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो दूध का प्याला पेश कर रहे हैं ढक करके, कहीं इसके अंदर कोई मक्खी ना गिर जाए, कहीं इसके अंदर कोई गंदी चीज ना गिर जाए, ढक करके दूध का प्याला पेश कर रहे हैं। तो द होल वाकया मेराज बेसिकली रिवॉल्व अराउंड हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला एंड अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन रिवॉल्व अराउंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो वो अल्लाह ताला ने हमें ऐसा लगता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन को मेराज अता फरमाई, ठीक है ना। जितनी एक उम्मती को मेराज मिल सकती है वो मेराज हिजरत के अंदर मिल गई। अच्छा दिल चाह रहा है आपको बता भी दें कि अपने शेख हजरत पीर जुल्फिकार अहमद आवत नक्शबंदी जान बताता हूँ से हमारी मदीना मुनव्वरा में मुलाकात हुई होटल में, तो इस वाली क्लास के बाद ना तो कहीं से बात निकल आई इसी तरह हजरत बकर सिद्दीक उदाहरण की। तो इस आजिज ने हजरत जी को बताया कि जी अभी हमारी क्लास के अंदर जो है ये बातें चल रहा था, तो अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली और बच्चों के बाद बताई कि ये जो है वाकई हिजरत जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की मेराज थी, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो मैंने बताया कि आप जो शेर पढ़ते हैं ना, यही शेर जो है वो पढ़ करके बच्चों को बताया था। तो हजरत जी ने सुन लिया और खामोश। अच्छा उसके थोड़ी देर के बाद ना हमारे एक दोस्त हैं शेख मुआविया साहब, कराची वाले, तो मुआविया साहब का भी दिल में एक बात आई, उन्होंने ऑटोग्राफ लेने का शौक है ना, तो भगवान बच्चों को ऑटोग्राफ देने का ज्यादा शौक होता है, तो वो अर्जी के बाद अपने ऑटोग्राफ बुक लेकर गए, अर्जी कुछ आप लिख दें इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद जब हमारी मजलिस खत्म हो गई तो फिर मुआविया साहब जो है वो अर्जी के पास आए कि जी आप कुछ इसके ऊपर अगर कुछ ऑटोग्राफ दे दें। तो मुझे बाद में आकर के बताते हैं कि हजरत जी जो है ना, उन्होंने ऑटोग्राफ में यही वाला शेर लिख करके दिया, यानी हजरत जी वाज थिंकिंग अबाउट इट, और हजरत जी को बात अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आ गई, ठीक है, उन्होंने यही बात जो है। अच्छा, तो वो मुझे आकर के बता रहे हैं कि आपने जो शेर बताया था ना, हजरत जी ने वही शेर लिख करके मुझे दिया है। बहरहाल, तो अब ये जो वाकया इफ्क है ना, ये हमें ऐसा लगता है कि ये वाकया इफ्क जो है, ये हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की मीराज, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने उनको भी बुलंद कर दिया, ठीक है, किस वजह से बुलंद कर दिया, उनकी इस निस्बत की वजह से जो कि नबी अलैहि सलाम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ उनको थी। और तीसरा बहुत बड़ा इसके अंदर खैर क्या थी, तीसरी बड़ी खैर के मुसलमानों को इस पूरे वाकये के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची थी, नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंची, अबू बकर सिद्दीक को और दीगर मोमिनीन को बहुत तकलीफ पहुंची थी, और मोमिनीन को जब तकलीफ पहुंचती है तो उससे जो है ना वो उनका दर्जा अल्लाह ताला के यहाँ और बुलंद होता है, वो सवाब मिलता है, जन्नत की करेंसी मिलती है ना, ताकि जन्नत के अंदर बड़े बड़े पर उनको चीजें मिलेंगी, ठीक है, सवाब मिलेगा तब मिलेंगी ना आगे की चीजें। बहरहाल, अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने जो है वो इस आयत के अंदर उस खबीस जिसका नाम क्या था, उबई, उसकी जो है वो सजा कभी कभी इसको जो है वो अजाब अजीम मिलेगा जो उसने हरकत करी है ना, और फरमाया कि भाई मोमिनी मोमिनात ने जो है वो अपने बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया जब इस किस्म की बात हुई थी, तो उनको तो जो है ना वो उनको ये कह देना चाहिए था कि भाई ये तो एक खुदा हुआ भुगतान है, ठीक है, लहुला जाओ वाले की ऑर्डर दे, तो इस वाले मामले के अंदर जो है ना चार गवाह के बगैर जो है वो बात ही नहीं करनी है, ठीक है, किसी के ऊपर तोहमत जो है उसने नहीं लगानी है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि वलौला فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم, कि अगर अल्लाह ताला का तुम्हारे ऊपर दुनिया और आखिरत में फजल ना होता ना, क्यों फजल है अल्लाह ताला का दुनिया और आखिरत में तुम्हारे ऊपर ईमान वालों के ऊपर, क्योंकि तुमने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक करी है और तुमने जो है वो उनका साथ दिया है, उनकी हेल्प करी है, इस वजह से मेरा फजल तुम्हारे ऊपर है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर ये फजल ना होता ना तो फिर जो है ना तुमको अजाब पहुंच जाता, ठीक है, तुमने जल्दी करी ना इस मामले के अंदर बातें करनी शुरू कर दी, आयशा सिद्दीका के बारे में बातें क्या करनी शुरू कर दी थी, बुरी बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन मजलिस के अंदर एक डिस्कशन होनी शुरू होगी, ठीक है ना, लोग चाहते नहीं थे कोई बुराई, यानी कहते ना अन यानी इंटेंशनली कोई बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बंदे ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने भी कुछ कह दिया, तीसरे ने भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरा फजल तुम्हारे ऊपर नहीं होता तो अज़ाब अज़ीम तुम्हारे ऊपर आ जाता। इस तलक़ौनहु बिअलसिनतिकुम व तक़ूलूना बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म, ठीक है, कि जो अफवाह थी तुमने तो वो अफवाह जो है वो कहनी शुरू कर दी और इस चीज का तुम्हें इल्म नहीं था, ठीक है, وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों के लिए भी खास तौर पर, وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, تَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا का मतलब क्या होता है, हैयना कहते हैं बड़ी हल्की सी बात, छोटी सी बात, ठीक है ना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम समझ रहे थे कि ये बड़ी छोटी सी बात है, जैसे कहते हैं ना कभी अक्सर बच्चे कहते हैं झूठ बोल करके या कोई गंदा काम करके कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, गुनाह कर दिया कोई बात नहीं, गलत बात कह दी कोई बात नहीं, किसी को बुली कर दिया कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं, तहसबूनहु हैयना, तुम समझते हो कि ये हल्की बात है, वह हुआ इंद अल्लाह अजीम, जबकि अल्लाह ताला के नजदीक ये बहुत बड़ी बात है, भाई झूठ बोलना ये अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ करती है, ठीक है, ये गुनाह है और गुनाह कोई भी छोटा नहीं होता, गुनाह कोई भी छोटा नहीं होता, ये गुनाह सगीरा वगैरह जो है ना ये एक अलग डेफिनेशन है, वरना अल्लाह ताला की नाफरमानी तो भाई सबसे बड़े की नाफरमानी, ये छोटी नहीं हो सकती, ठीक ٹھیک ہے، بے شک ہم اس کو چھوٹا سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عظیم چیز ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اگر تم نے یہ کیوں نہ کیا کہ جب تم نے اس کو سنا تھا نا تو تم کہہ دیتے کہ بھئی یہ تو بہتان عظیم ہے، یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ بہتان ہے۔ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ میں تمہیں جو ہے نا وہ رہا ہوں باس کر رہا ہوں کہ اگر تم نے دوبارہ اس قسم کی کوئی حرکت کری تو یعنی حرکت ہرگز واپس نہ کرنا، یہ والی دوبارہ یہ والی حرکت نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ حرکت نہ کرنا، اگر تم کافر ہو تو تمہارے لیے جہنم کا عذاب میں نے رکھا ہوئی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے آپ کو ایمان والے بھی سمجھ رہے ہو اور جو ہے وہ اس قسم کی حرکت جو ہے وہ بار بار کرے چلے جا رہے ہیں، نہیں دوبارہ نہیں کرنا یہ والی بات۔ تو یبین اللہ لکم الآیات، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا ہے اپنی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب علم رکھنے والے ہیں اور ساری حکمت رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اصول کی بات بتا دی ہے جو کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ آج بھی اپلائی ہوتی ہے، بلکہ آج اور بھی زیادہ ایک طریقے سے ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو کہ گندی باتوں کو ڈسکس کرنا پسند کرتے ہیں، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ایمان والوں کے درمیان گندی باتیں کرنا وہ لوگ پسند کرتے ہیں، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، بہت زیادہ تکلیف پہنچانے والا عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ شدید عذاب ہے، پھر دنیا والا آخرت، صرف آخرت کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی اور پھر آخرت کے اندر بھی، جو کہ اس قسم کی گندی باتیں جو ہیں وہ ایمان والوں کے درمیان کرتے ہیں۔ وہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو یہ غلطیاں جو ہے نا وہ بچے اکثر کر لیتے ہیں، بچے بھی، بچیاں کم کرتی ہیں لیکن لڑکے جو ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں، کہ ڈرٹی جوکس، ٹھیک ہے؟ ڈرٹی جوکس جو ہوتے ہیں نا، جو بے حیائی والے جوکس ہوتے ہیں، بے حیائی والی باتیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو سنا کر کے ہنس رہے ہیں، کوئی ہنس رہا ہے تو اب اس کے ساتھ جا کر کے ہنس رہے ہیں۔ اسکولوں کے اندر تو یہ بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسکولوں کے اندر ٹپیکلی ایسے لوگ جو سیکولر اسکول ہوتے ہیں، مدارس کی وہاں پہ ایسا کم ہوتا ہے، لیکن جو سیکولر اسکول ہوتے ہیں وہاں پر لوگ جو ہے وہ گندے جوکس پڑھ کر کے، گندی ناولز پڑھ کر کے، ٹیلی ویژن کے پروگرامز دیکھ کر کے یا فلمیں دیکھ کر کے وہ آتے ہیں، اور اس کے بعد کلاس میں جو ہے وہ اپنے بچوں، اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، کالیگس کے ساتھ ان چیزوں کو مینشن کرتے ہیں، اینڈ دے ٹیک ا لاٹ آف فن آؤٹ آف اٹ، اس کے اوپر ہنسی مذاق اور ہنس بہت تفریح کر رہے ہیں، ٹیچر کے بارے میں گندے جوکس کر رہے ہیں، اپنے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے والے دوسرے بچوں کے بارے میں گندے جوکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کا سب جو ہے تشیع الفاحشہ کے اندر آتا ہے، فاحش، فحش کام، گندے کام، illicit اور یعنی بےہودہ باتیں جو ہیں، زبان میں اس کو کہتے ہیں، یہ ان کو اسپریڈ کرنے کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور یہی باتیں جو ہیں وہ اگر ہم کوئی ٹیلی ویژن کے اندر ڈرامہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ڈرامے کے اس طرح کی باتوں کو جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، وہ بھی تشیع الفاحشہ کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر دردناک عذاب ہے، بہت برا عذاب ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بہت گندی ہو جاتی ہے، بہت بری ہو جاتی ہے، چین سے نہیں رہ سکتے یہ لوگ۔ تو ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہم خود جو ہے وہ اس قسم کی زندگی گزارے یا ہمارے کوئی جاننے والے، ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ ایسی زندگی گزارے۔ یہ جو ٹی وی ایکٹرز ہوتے ہیں، فلم ایکٹرز، کسی نے ان کے اوپر پوری کتاب لکھی، بہت سارے فلم ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز جو کہ ہالی ووڈ کے، امریکہ کے فلم سٹارز ہوئے ہوتے تھے، تو اس نے کتاب جو لکھی ہے نا وہ ساری یہی ہے کہ یہ بہت فیمس پرسنالٹی ہوتے تھے، جن کو آئیڈلز کہتے ہیں، جن کو جو ہے وہ لوگ اپنا بڑا ہیرو سمجھتے ہیں، बड़ी खूबसूरती के जो है वो आशिक हुए हुए होते हैं। इन सब की जिंदगियां शुरू में तो बड़ा ग्लैमर था, बड़ा स्पॉटलाइट के अंदर थी, बड़ा शोर, बड़ा उनका जो है वो लोग पसंद करते थे उनको। लेकिन एक वक्त आया जब ये रिटायर हो गए, अब ये बूढ़ी हो गई, बूढ़े हो गए, अब इनकी शक्ल ऐसी अच्छी नहीं है कि इनको जो है वो फिल्मों के अंदर वो कास्ट कर सके। तो फिर आखिर जो इनकी प्राइवेट लाइफ होती है ना बाद में, वो इंतहाई बुरी रही, बुरी हो गई, और इनके मौत के वक्त जो है ना वो बहुत ही इबरतनाक मामला था इन सब। ठीक है, उसने स्पेसिफिकली जो है वो बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस का जो है वो जिक्र अपने किताब के अंदर खास तौर पर किया, यही बात समझाने के लिए। ठीक है, खैर इस किस्म का अगर हमारे पास कोई किताब ना भी हो, अल्लाह ताला का कुरान तो कह रहा है ना, तो अल्लाह के कुरान ने कह दिया ये बात, तो हमें इसके ऊपर मजीद किसी दलील की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो ये दलीलें भी हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हरगिज हरगिज ना तो आपने खुद कोई डर्टी जोक, ठीक है, ना तो खुद कोई डर्टी जोक किसी को सुनाना है, और ना कोई दूसरा अगर लोगों को सुना करके एंजॉय कर रहा है, आपने उसके अंदर शामिल भी नहीं होना। ये भी नहीं कि जी मैंने कोई थोड़ी सुनाया था, वो तो वो सुना रहा था, वो सुना रही थी, तो बस मैंने तो खाली हंसा था। नहीं, खाली हंसना भी जो है ना, दिस ऑल्सो मेक्स यू पार्ट ऑफ इट, आप खुद भी फिर उसका हिस्सा बन जाते हैं, और जब अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है तो फिर वो सारे लोग उसका हिस्सा बन जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो दूर भागना है, जिस तरह एजेंट के वहां पर जो है ना वो कोई गोली मार रहा है, फायरिंग कर रहा है, और अगर वो फायरिंग अगर वो फायर आपको लग गया तो आप भी मर जाएंगे। अल्लाह का अजाब जो है वो बंदूक की गोली से ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है ना, और ये चीज उसके ऊपर भी अप्लाई होती है कि अगर घर के अंदर कोई मोबाइल के ऊपर इस किस्म की कोई फिल्म देख रहा है, गाना सुन रहा है, ठीक है, चाहे कोई भी गाना सुन रहा है, फिल्म देख रहा है, इस किस्म की चीजें देख रहा है, तो उसके अंदर जाकर के लोग ना दिखाओ हमें, मैं भी देखूं, मैं भी देखूं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर। नहीं, वो फाहिशा है, आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर होंगे अल्लाह का अजाब, अगर होंगे अल्लाह का अजाब, तैयार है उसके लिए, हाँ भी हाथ उठाए अल्लाह के अजाब के लिए मैं तैयार हूँ, नऊजुबिल्लाह। नहीं यार, गलती से भी नहीं उठाना है इसके ऊपर, मजाक में भी नहीं उठाना है इसके ऊपर हाथ। ठीक है, तो तशी और फाहिशा के साथ अल्लाह ताला का दुनिया और आखरत दोनों के अंदर अजाब है। कोई ऐसा कर रहा है घर के अंदर, चाहे वो घर का बड़ा क्यों नहीं, इवन घर का कोई बड़ा भी है ना, आपको उसको कहना है आप ये काम नहीं कर सकते, गलत कर रहे हैं आपके काम, और मुझे तो हरगिज जो है वो इसके अंदर आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना। अल्लाह का अजाब जो है ना ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरों को बढ़ के अपने बड़ों को आके बता दिया करें कि भाई ये फलाने शख्स जो है वो फैमिली के अंदर ये मोबाइल के ऊपर फिल्में देख रहे हैं, ये मोबाइल के ऊपर जो है वो इस किस्म की गंदी चीजें देख रहे हैं, आप इनको मना कर रहे हैं, खुद नहीं बात कर सकते तो आप दूसरे को बता दें। इस मामले के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और मैं जानता हूं जिन्होंने इस किस्म की हरकतें करी हैं बहुत नाराज हूं उससे, और आप सोच लें मेरी तो क्या हैसियत नाराज होने की, अल्लाह ताला के बारे में भी सोच लें, हमारे किसके पास जाना है, किसने हिसाब करना है भाई, मौलाना साहब ने हिसाब करना है, शेख साहब ने हिसाब करना है, हजरत जी ने हिसाब करना है, कब्र के अंदर किसने हिसाब करना है, अल्लाह ताला ने हिसाब करना है, और अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, अल्लाह ताला सब जानते हैं, और अल्लाह के फरिश्ते जो है वो सब कुछ लिख रहे हैं हमारा। इतने तो हमें कमजोर मुसलमान नहीं बनना चाहिए, इतना तो कमजोर मुसलमान नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, बनना चाहिए भाई इतना कमजोर मुसलमान जिसका जी चाहे हमें गुनाह के अंदर लगा दे, जिसका जी चाहे हमें जो है वो फोहश काम के अंदर लगा दे। ये है हमारा इस्लाम, इसलिए हमने सीरत क्लासेस नहीं है, इसलिए हमने तफसीर की क्लासेस पढ़ी है, इसके लिए हमने बयान अटेंड किए हैं, इसके लिए हमने कुरान हिफ्ज किया है। इतने कमजोर मुसलमान, इतने कमजोर मुसलमान, हमारे ऊपर तो डबल अजाब हो जाए। जो दूसरे लोग हैं जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं वो सीरत क्लास में आते आते हैं भाई, वो बयान में जाते हैं, वो जो है वो तफसीर पढ़ते हैं, वो कुरान हिफ्ज करते हैं, वो अगर गुनाह कर रहे हैं तो उनको तो एक अजाब होगा, और हम अगर इस वाले गुनाह के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं हमें तो दुगना अजाब होगा इसमें, राइट, हमें तो दुगना अजाब होगा इसमें। تمہیں تو میں نے اپنا قرآن دیا تھا، تمہیں میں نے اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کی اتنی ساری تفصیلات، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اپنے نبی علیہ السلام اپنے محبوب کی زندگی تمہارے سامنے کھول کر کے رکھوا دی تھی، اور تم نے یہ کیا میرے ساتھ، تم نے یہ کام کیا میرے حکموں کے ساتھ. اتنا بڑا عذاب ہم نہیں سہ سکتے نا، اتنا بڑا عذاب ہم نہیں سہ سکتے. ٹھیک ہے، فرزند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ہم نے تو اشارے سے بہت زیادہ آگے جا کر کے بات کر. تو پھر یہ ہوا کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور ان آیتوں کا کچھ حصہ بھی آگے اور بھی آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو انہوں نے پھر بتا دیا وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے اٹھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر بوسہ دیا. ٹھیک ہے، اور مبارکباد دی کہ بیٹا تعالیٰ نے اتنی آیات تمہارے لیے نازل کر دی، اپنی بیٹی کو مبارکباد دی. ٹھیک ہے، تو بیٹی نے کہا اللہ حضرتنی، آپ نے میری طرف سے پہلے عذر کیوں نہیں پیش کیا، ابو آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں معذور اور بے قصور سمجھا. یہ حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، عیسائی کا. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں معذور سمجھا، میں تو آپ کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، آپ کہہ دیتے ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیٹی ایسا کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری بیٹی ایسا کام کرے. ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، انہوں نے عجیب جواب دیا، عجیب و غریب جواب دیا. انہوں نے فرمایا ایو سماء تظنی، کہ کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرتا، یعنی مجھے کون سا آسمان ڈھانپتا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے سے، کون سا والا سامان، کون سا والا آسمان جو ہے نا وہ مجھے پروٹیکشن دیتا، شیلٹر دیتا. وہ ایو ارض تقلنی، اور کون سی زمین مجھ کو اٹھاتی، اذا قلت ما لم اعلم، اگر میں وہ بات کہتا کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے، کون مجھے پناہ دیتا، کون سی زمین مجھے اٹھاتی اگر میں وہ بات کہتا جس کا مجھے علم نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھائی. اب یہ ایک بڑا کمپلیکس معاملہ ہے، سمجھا تو الحمدللہ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ کافی کم ہی ہیں، آپ پر بڑی عمر والے بھی لوگ ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی ہی، لیکن چھوٹوں کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آنا کافی زیادہ اس کے اندر مشکل ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کس مقام کے اوپر تھے، صدیقیت کے مقام کے اوپر. صدیقیت کا جو مقام ہے نا، جو درجہ ہے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے نبوت کے بعد. سب سے اونچا درجہ انسانوں کے اندر نبوت کا درجہ ہے، اس سے زیادہ اونچا تو کوئی درجہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو نبی نہیں ہوتے ان میں سب سے اونچا درجہ جو ہے نا وہ صدیقیت کا ہے، اور صدیقوں میں سے بھی سب سے اونچا صدیق کون ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ صدیقیت کیسے کمائی تھی، کوئی بتایا گا آن لائن تو آج کوئی جواب آپ نہیں آ رہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیقیت کمائی کیسے تھی، حاصل کیسے کرے، آن لائن کا تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، آواز تو آ رہی ہے نا آپ کو، پھر اس کے بعد داؤد بھائی سے پوچھیں گے کہ ان سے بھی میں نے ایک منٹ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیقیت کا درجہ کیسے ملا، کب ملا، چلے داؤد بھائی آپ بتائیں. معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے سے، نبی علیہ السلام پر اعتماد کر کے، when حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ confirmed معراج of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، کیا واقعہ ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کو جب معراج نصیب ہوئی تھی، تو صبح کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے پھر لوگوں کے پاس گئے بازار وغیرہ میں. ٹھیک ہے نا، और वहां पे जाकर के लोगों को बताना शुरू किया, नॉन मुस्लिम्स ही थे ज्यादातर वहां पर, कि भाई मैं जो ना रात के वक्त बैतुल मुकद्दस तक गया था, वहां पे मैंने लोगों को नमाज पढ़ाई, ये सब कुछ हुआ, फिर जो है वो मुझे आसमानों के ऊपर ले जाया गया, वहां पे मैंने ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा, ठीक है, और ये सब कुछ करके मैं वापस अपने घर में आ गया। तो सारे के सारे जो काफिर थे, ये क्या भाई, ये तो टू मच हो गया भाई, कहते ना ये तो दिस इज टू मच, ठीक है। तो अबू जहल को जो है ना उस वक्त एक आइडिया सूझा, उसने कहा कि ये जो इनका सबसे बड़ा सपोर्टर है ना वो है अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, तो वो हर बात में इनकी हाँ 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 मिलाते रहते हैं ना, तो आज जो है ना मैं जाकर के उसको ये वाली बातें बताता हूँ, यकीनन वो कहेगा, क्योंकि वो तो काफिर था ना, वो इस तरह से बात करता है, वो कहेगा कि ये हो ही नहीं सकता। तो वो भागा भागा जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक अजान के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे जो साहब है ना, तुम्हारे दोस्त, वो ये बातें कर रहे हैं आज तो, है ना, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उसका उसका ख्याल ये था कि ये कहेंगे कि ना ये तो वाकई बहुत बहुत हो गया, टू मच हो गया, है ना। लेकिन अबू बकर सिद्दीक अजान ने जवाब दिया कि अगर, यानी उसके ऊपर एतमाद नहीं किया कि तुम सही कह रहे हो, तुम मुझे सही सही बता रहे हो, ठीक है, उनको अबू जहल के ऊपर एतमाद नहीं था। आज हम फौरन काफिर के ऊपर एतमाद करते हैं, CNN, Fox News, Dawn, जंग अखबार, जो कि सारे के सारे मीडिया आउटलेट्स उनके कब्जे में है, हम फौरन उसके ऊपर कोई खबर आ जाए हम कहना मैं ईमान लाया उसके, मैंने इसकी तस्दीक कर दी, इतने लोग मर गए कोरोना से, मैंने इसकी तस्दीक कर दी, हाँ वाकई मर गए, है ना। अगर कोरोना से जो है वो लोग मर रहे होते थे, डॉन के ऊपर मर रहे होते थे, कराची के अंदर और इंडिया के अंदर लाखों लोग जो है ना वो कच्ची आबादी में रहते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर कच्ची आबादी के अंदर जो है वो पानी भी साफ नहीं होता, लोग जो है वो एक दूसरे के, नो सोशल डिस्टेंसिंग, राइट, सारे के सारे जो है वो झोपड़ियों में रह रहे हैं, ये है ना, वहां पे कोरोना नहीं आता था, है ना, ना तो क्या कहते हैं आपके कलकत्ता की कच्ची आबादी में कोरोना आया, ना तो कराची की कच्ची आबादी में कोरोना आया, ना तो लाहौर की कच्ची आबादी में, ना किसी गांव के अंदर, किसी देहात के अंदर, है ना भाई, इतने गंदे मामलात, वायरस तो उसके अंदर यूं फैलना चाहिए था और सबको मर जाना चाहिए था, और उसके बाद जो है ना वो ईजी ट्रस्ट की जो है वो एम्बुलेंस से कम पड़ जानी चाहिए थी, है ना, कि इतने लोग मर गए और इतने वार्ड्स जो है वो खाली, सारे के सारे लोगों की लाशों से पिट गए, है ना, ताफुन उठ रहा होता, जैसे कि वो जब वो याजूज माजूज मरेंगे ना सारे के सारे, तो उनकी लाशें उठाने वाले लोग नहीं होंगे, इतनी लाशें होंगी, ठीक है, तो अब जो है वो याजूज माजूज की लाशों में से बदबू उठना शुरू हो जाएगी, गन्ना सड़ना शुरू हो जाएगी, तो कोरोना में भी तो यही होना चाहिए था ना भाई, राइट, लेकिन कच्ची आबादी में कोरोना ही आके दिया, आता था तो डिफेंस में, आता था तो क्लिफ्टन के अंदर, आता तो जो है वो अमीर कबीर है, और हम कहते थे अमन ना और सतत ना, बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं, जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, हमें इसके ऊपर यकीन है, एतमाद है, जबकि हमारे जो सरखेज इमाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को अबू जहल को कहते हैं प्लीज तुम्हारी बात पर एतमाद नहीं, अगर ये बात हुई है जैसे कि तुम कह रहे हो, अगर हुई है तब जो है ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है सच कहा, ठीक है ना, मुझे उनकी, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना नहीं अभी तक उनको, मैंने कुछ नहीं देखा अपनी आंखों से, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सच ही कह रहे हैं, ठीक है, इस मौके पर उनको सिद्दीक का लकब नबी रसूलुल्लाह सुल्तान दे दिया, ठीक है, तो ये वो मौका था जब उन्होंने सिद्दीकियत कमाई, he earned the मुकाम ऑफ सिद्दीकियत, ठीक है। अब ये जो सिद्दीकियत कमा ली है, आप कोई चीज कमा लेते हैं, है ना, आपके पास जो है वो $100,000 आ गए, अब उसके बाद कमाने के बाद अगला काम क्या करना होता है भाई, कोई बताएगा, कमाने के बाद अगला काम क्या करना होता है, उसको खर्च करना होता है, या क्या करना होता है, बचाना होता है उसको, उसकी हिफाजत भी तो करनी होती है ना, आपने एक मुकाम कमाया, आपने इज्जत कमाई है, अब उस इज्जत की भाई हिफाजत भी करनी होती है, ये नहीं कि बस मिल गई तो अब हमेशा के लिए मिल गई, ठीक है ना। तो इस मौके पर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी सिद्दीकियत जो है वो बचाई, ठीक है, कि भाई ये मेरी बेटी है, इसके साथ तो मेरा फैमिली रिलेशनशिप है ना, ये तो मेरी घर की मतलब मेरी लाडली है ये, ठीक है ना, ये अल्लाह की नबी नहीं है, ये अल्लाह की नबी नहीं है, मेरे साथ इसका ताल्लुक जो है वो खानदानी वाला ताल्लुक है, अब मैंने नहीं देखा کیا ہوا معاملہ؟ میں نے معاملہ نہیں دیکھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جب مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے تو میں اس کی تصدیق کیسے کر دوں گی؟ تو اللہ کی نبی تو نہیں ہے نا، عائشہ جو ہے وہ اللہ کی نبی تو نہیں ہے، اور میرے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ بیٹی والا تعلق، ٹھیک ہے نا، بیٹی والا تعلق جو ہے وہ چھوٹے والا تعلق ہوتا ہے نا، بڑے والا تعلق تو نہیں ہوتا نا، چھوٹے والا تعلق نا، بیٹی چھوٹی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. تو میں کسی ایسی بات کے اوپر جس کا مجھے علم نہیں ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کری، اور انہوں نے ان کے حق میں بھی کوئی بات نہیں کری، ٹھیک ہے. اور یہی معاملہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہوا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بیوی والا تعلق تھا، ماں والا تعلق تو نہیں تھا نا بھائی، بیوی والا اور امتی والا تعلق تھا نا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹی تھی، چھوٹی تھی یا بڑی تھی؟ عمر میں بھی چھوٹی تھی، مقام میں بھی چھوٹی تھی، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہ ان کے فور کوئی بات کری، نہ ان کے اگینسٹ کوئی بات کری، ٹھیک ہے نا. ایک موقع پر ایکچولی ان کے فور پھر بات کری، وہ بھی مشورہ مشورہ کرنے کے بعد بات کری، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا وہ انتہائی محتاط لوگ تھے، دے ور ویری 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 کیئرفل بھی، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اور بھی وجوہات بنتی ہیں جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا، پھر جب یہ واقعہ ہو گیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے نا، وہاں سے نکلے اور مسجد کے ممبر کے اوپر گئے، اور وہاں پہ جا کر کے سارے مجمع کو اکٹھا کیا، اور یہ جو آیات نازل ہوئی تھیں یہ آیات پھر لوگوں کے سامنے سنائی. یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت فرمائی اللہ تعالیٰ کی آیات کو لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ جب یہ آیات کی تلاوت ہو گئی تو اس وقت جو ہے نا یہ بالکل معاملہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ جو سننے والے تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر جب آپ نے بات کہہ دی، بالکل ڈاؤٹ، ایبسولیوٹلی امپوسبل ڈاؤٹ ہے نا. ورنہ منافق قسم کے اگر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اچھا یہ تو انہوں نے خود ہی بنا لی ہوگی، ہے نا، یو نوز، ہم نے کوئی تھوڑی دیکھا جبرائیل کو آتے ہوئے، ہم نے کوئی تھوڑی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو ہے وہ لوح محفوظ میں سے قرآن میں سے یہ نکل کر کے یہاں پہ آئی ہے. ہاں چلو ان کے گھر کے معاملہ ہے، انہوں نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہے نا وہ ناؤز بلا سما ناؤز بلا خود ہی بنا لی ہوں گی. نہیں، صحابہ کرام ایسے بالکل بھی نہیں، وہ ایمان والے تھے اور اعتماد والے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کی ہوتا ذرہ برابر بھی پھر ڈاؤٹ نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، کنفرم ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا، ان کا ایک میسج پڑھ کر کے آگے کہتے ہیں کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر آف بلیم آف اسینشن دیتی سے رہنے دو جی. اس طرح تو پھر اسمپشن کرنا گناہ کبیرہ ہوگا جب ہم کسی کے بارے میں ایزیوم کرتے ہیں. ہاں، جب کسی کے بارے میں ہم ایزیوم کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. جب کس قسم کی، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کیا چیز آپ ایزیوم کر رہے ہیں، اس کے حساب سے پھر گناہ ہوتا ہے. اچھا، اب اس معاملے کے اندر کیا ہوا کہ جب عبداللہ بن عبی نے بات شروع کری، اس نے جو ہے وہ لوگوں میں کہنا شروع کیا، تو کچھ لوگ بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بات کو آگے بڑھانے میں شامل ہو گئے، اور کچھ لوگ جو تھے نا جو کہ پکے مومن تھے اور بالکل نیک اور سچے تھے، لیکن وہ جو ہیں وہ باقاعدہ اس بہتان لگانے والوں میں بھی شامل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ان سے یہ غلطی ہو گئی. وہ تین ایمان والے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. وہ کون تھے؟ ایک تو بھائی مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کی امی جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے. اور ایک تھے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی تھے اور نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے، ٹھیک ہے نا. جب منافقین اور جو کافرین تھے نا، منافقین تو خیر نہیں، جو یہودی تھے اور جو مشرکین تھے، وہ نبی علیہ السلام کے خلاف شعر و شاعری کیا کرتے تھے، ہے نا، گندے گندے شعر لکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، برا بھلا اپنے شعروں کے اندر کہتے تھے، پوئٹری کے اندر، ٹھیک ہے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک پوئٹ تھے. یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف سے ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی جو گندی پوئٹری آپ کے خلاف ہی لکھتے ہیں نا، میں ان کو پوئٹری میں ہی جواب دوں گا، नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी को परमिशन दी बाकायदा कि हाँ तुम उनको जवाब दो अपनी पोएट्री का। तो हसन बिन साबित ने फिर बाकायदा जवाब में शेर लिखने शुरू। ठीक है, अच्छा एक बड़े मजे की बात कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक इस तरह की एक बात इनसे कही थी कि तुम जो अपनी पोइट्री के अंदर बात कहोगे, मुझे एग्जैक्टली उसके अल्फाज याद नहीं है, तो इस तरह फरमाया था कि तुम जो कहोगे ना इस तरह की बातें, तो उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही होंगी, वो लोग करते ये थे जो गंदी बातें लगाते थे ना, तो ये लोग जो है ना करते ये है कि कोई सही वाली बात जो कि इनफैक्ट होती है उसको जो है ना वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है ना वो गलत रुख में लेके जाते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं और इस तरीके से इल्जाम लगाते हैं। ठीक है ना, अब ये बच्चों को तो शायद मुश्किल से समझ में आए ये बात वाली बात, लेकिन बस इस तरह करते हैं कि जैसे होता है ना उर्दू में कहते हैं बात का बितंगड़ बना लेना, है ना, राई का पहाड़ बना लेना। ठीक है ना, चीज तो बहुत छोटी सी थी और वो चीज जो है वो विद इन द कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही सही चीज है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आप उस बात को देखेंगे ना तो वो बड़ी बुरी लगेगी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को लेकर के फिर जो है ना वो इल्जाम, जैसे आजकल उलमा के खिलाफ लोग यही काम कर रहे होते हैं, कोई एक बात जो है ना वो पकड़ करके जो कि कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको लिया जाए तो बड़ी गंदी बात लगती है। जैसे कि इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में है ना कि उन्होंने जो है वो नऊज बिल्ला यानी एक बात करी थी कि भाई मेरी जो है वो बहन है, कि हालांकि वो बहन तो नहीं थी, बस वो क्या नाम था, सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बहन तो नहीं थी वो तो बीवी थी, लेकिन इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा कि मेरी बहन है। अब इसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, ओ इब्राहिम अलैहि सलाम झूठ बोल रहे, बहन तो नहीं थी, ये इन्होंने कैसे कह दिया कि बहन, इसको क्या कहेंगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट क्या था कि एक जालिम बादशाह था जो कि औरतों की इज्जत बिल्कुल खराब कर दिया करता था और उससे हिफाजत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको जो कहा कि ये मेरी बहन है, तो उसमें भी नियत ये करी कि ये दीन में मेरी बहन है, ईमान के हिसाब से मेरी बहन है, ये है पूरा कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ जब आप बात को देखेंगे भाई कोई मसला नहीं है उनकी बात के अंदर। ठीक है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो बड़ी गंदी बात है। ठीक है, तो ये शायर जो है ना वो गंदे शायर यही काम किया करते थे। तो इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि भाई ये जो मेरे खिलाफ इस तरह के काम करते हैं ना तो तुम इसका क्या करोगे, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब, उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मैं ना आपको दूध में से मक्खी की तरह से बाहर निकालूंगा। क्या मतलब कि दूध के अंदर अगर कोई चीज पड़ जाती है ना, ठीक है, तो जब आप उसको बड़े खूबसूरती के साथ बाहर निकाल लेते हैं ना तो दूध में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, यानी दूध जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा ही रहता है, कोई उसके अंदर गंदगी नहीं होती, आपने उस चीज को बस अलग से बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं ना आपको उस पूरे के पूरे जो इन्होंने एक बुरी बात करी होती है ना, मैं बड़े खूबसूरती के साथ आपको उसके अंदर से निकाल लूंगा और जो है ना वो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो बड़े जहीन भी थे और शेर व शायरी के पर्दा था ना इनको, ऐसा जो है वो मुकाम फरमाया था, लेकिन इस वाले मसले में ये भी इन्वॉल्व। सुभान अल्लाह, देखिए कितना डरना चाहिए, ऐसे ऐसे बड़े लोग जब शैतान जो है वो उनके को भी फंसा देता है किसी चीज के अंदर, बेशक वो तो सहाबी थे, उन्होंने तौबा कर लिया अल्लाह ताला से राजी, लेकिन भाई हम तो सहाबी नहीं है ना भाई, अगर हम जो है वो फंस गए तो फिर हमें कौन निकालेगा भाई, हम तो फिर मारे चले जाएंगे ना, बिल्कुल मारे जाएंगे। इस वजह से हमें तो बहुत डरते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से बहुत जो है ना वो मदद मांगते रहना चाहिए, अल्लाह कहीं मैं किसी फितने में मुब्तला ना हो, कहीं मैं जो है ना किसी मसले में फंसता ना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो तीसरी थी वो एक खातून थी सहाबिया और उनका नाम क्या था, हमना बिनते जहश रजी अल्लाह तआला। तो ये तीन सहाबी जो है ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे, यानी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला के ऊपर तोहमत लगाने में। तो अगर कोई झूठी तोहमत किसी के ऊपर लगाता है तो शरीयत ने जो है ना फिर उसके ऊपर बकायदा सजा मुतय्यन करी है कि उसको जो है वो कोड़े लगाए जाते। ठीक है, तो इन तीनों सहाबी को भी जो है सहाबा को भी जो है वो कोड़े लगाए गए बकायदा सजा मिली। ठीक है, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के बारे में कंफर्म नहीं है कि उसको कोड़े लगाए गए कि उसको कोड़े नहीं लगाए गए। जी कोड़े क्या होते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने सवाल किया, कोड़े कहते हैं लैशेस कहते हैं उसको इंग्लिश में, जैसे कि बेड से मारना सुना कभी? क्या कभी पिटाई हुई है बेड से घर में? अब तो अलहमदुल्ला आपने नहीं सुना किसी की बेड से पिटाई होती है, लेकिन पिछली जनरेशन में बड़ी बेड से पिटाइयों के वाकयात सुनते थे। ठीक है, यानी अब तो अल्लाह का शुक्र हम बेड पहनते ही नहीं है, ये भी एक अच्छा फायदा हो गया है। यानी कोई इस किस्म का ना बैटन किस्म का, या तो डंडा या जो है वो लेदर का बना हुआ जो है ना वो चाबुक, चाबुक समझते हैं जैसे घोड़े को मारने के लिए जो घोड़े को के जो होते हैं राइडर्स जो होते हैं वो घोड़े को मारने के लिए एक चाबुक इस्तेमाल करते हैं, वो भी लेदर की बनी हुई होती है और उससे ठीक ठाक चोट लगती है। ठीक है, तो उसी को जो है वो घोड़ा कहा जाता है, यानी इस तरह की एक लंबी सी चीज जो फ्लेक्सिबल भी हो और उसको जो है ना वो पीठ के ऊपर करके मारते हैं। ठीक है ना, और उससे बहुत तकलीफ होती है। तो इस्लाम के अंदर जो बड़े बड़े जुर्म है ना तो उनके अंदर घोड़ों की सजा अल्लाह ताला ने रखी हुई है। ठीक है, उनमें से एक ये भी है, गेटिंग स्लैप्ड बाय ए विप, हाँ उसको विप भी है, WHIP विप। ठीक है, इससे कोई मरता नहीं है लेकिन तकलीफ काफी ज्यादा होती है, और इसका मकसद क्या होता है? तकलीफ पहुंचाने से मकसद ये होता है कि आइंदा कोई भूल के भी ऐसा काम ना करे। ठीक है, मुआशरे के अंदर इस तरह की चीजें जो है बिल्कुल खत्म हो जाए और मुआशरा बिल्कुल सोसाइटी बिल्कुल पाक हो जाए। पर्दे का हुक्म जो आ गया है, सहाबिया को कोड़े कैसे मारेंगे? माशाल्लाह, पर्दे का हुक्म भी आ गया, सहाबिया को कोड़े कैसे मारे? तो औरतों को जो कोड़े मारे जाते थे ना, बल्कि खैर अब तो नहीं मारे जाते कहीं पे, लेकिन औरतों को कोड़े मारे जाने का तरीका ये होता है कि उनको कोठे के अंदर बिल्कुल कवर कर, जैसे बाहर निकलते हुए जो औरत बिल्कुल अपने आप कोठे में कवर कर लेती है ना, तो वो बाहर वाला मुक्का, बाहर वाला हिजाब होता है, बाहर वाला पर्दा होता है, तो उस पर्दे के अंदर फिर जो है वो मारा जाता है। ठीक है, यानी वो पर्दे में होती है और दूर से जो है वो मारने वाला जल्लाद होता है, उससे वो मारता है। अच्छा, यहाँ पे हम आज की क्लास खत्म करते हैं, देखने का टाइम कम हो चुका है, बाकी ये वाक्य थोड़ा सा और रहता है, वो कोई और सवाल किसी ऑनलाइन या ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो तुम क्लास खत्म करते हैं, वहां
रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड।
Thank you.